लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे दुर्व्यवहार के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कलीसिया के सदस्यों द्वारा दुराचार को सहन किया। हमारी अर्थ याचना है कि कलीसिया के भीतर ही वे अपनी पीड़ा का समाधान ढूंढ सकें तथा शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम सुसमाचार की खुशी की चर्चा कर रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक धर्म शिक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान विश्व में नवीन सुसमाचार प्रचार के संबंध में प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम प्रकाशित किया। 24 नवंबर सन 2013 को प्रकाशित किए गए अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस पूरी कलीसिया से यह आग्रह करते हैं कि हम सभी ख्रिस्तीय अपने जीवन में सुसमाचार के एक नए अध्याय की शुरुआत करें। वे कलीसिया को शिष्यों का एक समुदाय घोषित करते हैं जो सदैव प्रेरितिक कार्य हेतु बुलाई गई है। एवेंजेली गौडियम संत पापा फ्रांसिस के परम धर्माध्यक्षीय काल के विशेष मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जहां हम ख्रिस्तियों का गरीबों के प्रति कार्य, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य कानूनी बातों के संबंध में उत्तरदायित्व का जिक्र पाते हैं। वे सामाजिक प्राथमिकताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं। श्रोताओं, एवेंजेली गौडियम का तीसरा अध्याय सुसमाचार की घोषणा का जिक्र करता है। हम में से प्रत्येक जन अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार की घोषणा करने हेतु बुलाए गए हैं। हमने अपने पिछले प्रसारण के अंतिम भाग में आध्यात्मिक पठन और लोगों को सुनने की चर्चा की। आध्यात्मिक पठन हमें प्रभु वचनों को व्यक्तिगत रूप में समझने हेतु मदद करता है, जहां सर्वप्रथम हम अपने लिए एक संदेश को पाते हैं, वहीं लोगों को सुनने के द्वारा हम उनके मनोभावों और उनकी परिस्थिति से अपने को अवगत करते हैं, जो उनके अनुरूप हमारे संदेश को तैयार करने में हमारी मदद करता है। श्रोताओं, इस प्रयास में हमें केवल इस बात की आवश्यकता है कि हम कुछ साधारण मानवीय अनुभव के बारे में सोचें, जैसे कि एक आनंद पूर्ण पुनर्मिलन, निराशा का एक क्षण, अकेले होने का भय, दूसरों के दुखों के प्रति संवेदना, भविष्य को लेकर अनिश्चितता, प्रेम किए जाने वाले व्यक्ति की चिंता इत्यादि। लेकिन हमें एक विस्तृत और गहरी संवेदनशीलता विकास करने की जरूरत है कि क्या लोगों के जीवन को सचमुच में प्रभावित करता है। हमें इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि हम उन सवालों का उत्तर ना दें जिसे किसी ने नहीं पूछा है। ना ही यह उचित है कि हम लोगों का ध्यान आकर्षित करने हेतु उन हालिया समाचारों का जिक्र करें। इस कार्य के निष्पादन हेतु दूरदर्शन है। यद्यपि यह संभव है कि हम इसकी शुरुआत कुछ आंकड़ों या कहानी से करें, जिससे ईश्वर के वचन, मन फिराव के बुलावे, आराधना, भाइयों के प्रति निष्ठा और सेवा इत्यादि भावनाओं को जोरदार ढंग से लोगों के मध्य ध्वनित करे। इन सारी चीजों के बाद भी कुछ लोग होंगे जो हाल फिलहाल की घटनाओं में उपदेशक की व्याख्या को उत्सुकता पूर्वक सुनेंगे, जबकि वे अपने में मन फिराव नहीं लाएंगे। श्रोताओं, कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि वे अपने में अच्छे उपदेशक हो सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें उपदेश में क्या कहने की आवश्यकता है। लेकिन वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उनकी प्रस्तुति कैसे होनी चाहिए। कहने का अर्थ, ठोस रूप में एक उपदेश को तैयार करना। जब लोग उन्हें नहीं सुनते या उनकी प्रशंसा नहीं करते तो वे शिकायत करते हैं, लेकिन शायद उन्होंने अपने संदेश को प्रस्तुत करने हेतु उचित रूप में मार्गों को खोजने की कभी कोशिश नहीं की है। हम याद रखें कि सुसमाचार प्रचार के तरीके और साधन जिसका उपयोग किया जाता है वह सुसमाचार की मुख्य बातों को धूमिल न करे। जिस तरह से हम सुसमाचार की घोषणा करते हैं उसकी चिंता करना भी एक गहन आध्यात्मिक चिंतन करने की भांति है। यह अपने में इस बात को सम्माहित करता है कि हम ईश्वर के प्रेम का प्रत्युत्तर अपने सारे गुणों और क्रियाशीलता को प्रेरिताई की सेवा में उपयोग करते हैं जो हमें ईश्वर की ओर से मिला है। इसके साथ ही यह हमारी ओर से पड़ोसी प्रेम को व्यक्त करता है जहां हम दूसरों के लिए खराब चीजों को नहीं देते हैं। धर्म ग्रंथ बाइबल में उदाहरण के लिए हम प्रवक्ता ग्रंथ की पुस्तिका में उपदेश की तैयारी के संबंध में एक सुझाव को पाते हैं जिसके फलस्वरूप हम बेहतर रूप में लोगों के निकट पहुँच सकते हैं। तुम संक्षिप्त बल्कि सार गर्भित भाषण दो। श्रोताओ, संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि हम साधारणतः कुछ एक उदाहरणों का उपयोग करें। आइए हम कुछ प्रायोगिक संसाधनों की याद करें जो हमारे प्रवचन को समृद्ध और अति मनमोहक बनाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात हमारे लिए यह है कि हम कैसे अपने उपदेश में निशानियों का उपयोग करना सीखते हैं, कैसे उन्हें आकर्षक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। कभी कभी उदाहरणों का उपयोग एक निश्चित बिंदु को सुस्पष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन ये उदाहरण सिर्फ दिमाग को आकर्षित करते हैं। निशानियां वहीं दूसरी ओर लोगों को संदेश स्वीकारने और उनकी प्रशंसा करने में मदद करती हैं, जिनके द्वारा हम अपनी बातों को लोगों के बीच में प्रसारित करना चाहते हैं। एक सुंदर निशानी संदेश को परिचित बनाती है जो हमारे निकट हमारे रोज दिन के जीवन से मेल खाती और प्रायोगिक होती है। एक सफल निशानी लोगों में संदेश के स्वाद को बढ़ाती है। यह एक इच्छा उत्पन्न करती और धर्म ग्रंथ की ओर हमारी चाह को अग्रसर करती है। एक बार एक बुजुर्ग शिक्षक ने मुझसे कहा, एक अच्छे उपदेश में एक विचार, एक भावना, एक निशानी होनी चाहिए। श्रोताओ, संत पापा पॉल छाटवे कहते हैं कि विश्वासी हमारे प्रवचन में बहुत अधिक आशा करते हैं और इससे उन्हें बहुत लाभ मिलता है, बशर्ते कि यह साधारण, स्पष्ट, सीधा, उचित रूप में सुसज्जित हो। साधारण का तात्पर्य भाषा के सरल उपयोग से है। यह ऐसा होना चाहिए कि जिसे लोग समझते हो, नहीं तो हम निरर्थक बोलने की जोखिम में पड़ जाते हैं। उपदेशक गण बहुधा विशेष परिस्थितियों में उन शब्दों का उपयोग करते हैं जिन्हें उन्होंने अध्ययन के दौरान सीखा है, जो साधारण सुनने वालों के दैनिक जीवन की भाषा का भाग नहीं है। ये सभी शब्द ईश शास्त्रीकरण या धर्म शिक्षा के दौरान उचित हैं, लेकिन इसका अर्थ ज्यादातर ख्रिस्तियों की समझ से बाहर होते हैं। एक उपदेशक के लिए सबसे बड़ी जोखिम यह हो जाती है कि वह अपनी भाषा से इतना अभ्यस्त हो जाता कि वह सोचता है कि अन्य दूसरे भी उसे स्वाभाविक रूप में समझ लेते और उसका उपयोग करते हैं। संत पापा कहते हैं कि यदि हम लोगों की भाषा को अपने में धारण करने की चाह रखते और उनके बीच ईश वचन को ले जाने की सोचते हैं, तो हमें उनके जीवन में शामिल होते हुए उन्हें सप्रेम ध्यान देने की जरूरत है। सरलता और स्पष्टता दो अलग अलग चीजें हैं। हमारी भाषा अपने में सरल हो सकती है, लेकिन हमारा प्रवचन बहुत स्पष्ट नहीं हो सकता है। यह लोगों की समझ से परे हो सकता है क्योंकि यह अपने में अव्यवस्थित है। इसमें तार्किक प्रगति का अभाव या हम एक समय में बहुत सारी चीजों के बारे में जिक्र करते हैं, अतः हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि प्रवचन में एक विषयगत एकता, स्पष्ट क्रम और वाक्यों के बीच सह संबंध हो, ताकि लोग उपदेशक का अनुसरण आसानी से कर सकें और उसके तर्क को समझ सकें। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम सुसमाचार की खुशी पर एक चर्चा की। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
सुनो मेरा उपदेश नया, नहीं सच है मेरी बात करो यकीन। एक दूजे के पांव सदा
बोले प्रभु,
जैसा के मैंने किया
प्रभु,
आपस में प्रेम के प्रतीक तुम बने रहो स्वर्ग।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने विश्वासियों को अच्छाई में बने रहने का प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने 14 मार्च को एक ट्वीट के माध्यम से कहा, जिस प्रकार एक पेड़ को हम उसके फल से पहचानते हैं, उसी प्रकार भले कार्यों से भरे व्यक्ति का जीवन प्रबुद्ध होता है एवं दुनिया में ख्रिस्त की खुशबू बिखेरता है। संत पेतरस महागिरजाघर के प्रांगण में 14 मार्च को शाम 8 बजे से 9 बजे पौत्र संस्कार की आराधना की जाएगी। पौत्र संस्कार की आराधना संत पापा फ्रांसिस के कार्तिक कलीसिया के परमाध्यक्ष के रूप में 10 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में की जाएगी। वैटिकन सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम को संत पेतरस महागिरजाघर के प्रांगण में आयोजित इस प्रार्थना का संचालन महागिरजाघर के महायाजक कार्डिनल मौरो गम्बेत्ती करेंगे। संत पापा फ्रांसिस ने 13 मार्च को कार्तिक कलीसिया के परमाध्यक्ष चुने जाने का 10वां वर्षगांठ मनाया। इस अवसर पर वैटिकन मीडिया ने एक पॉडकास्ट तैयार किया है, जिसमें वे बतलाते हैं कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वे तीसरे विश्व युद्ध के समय में पोप बनेंगे। संत पापा ने बतलाया कि उनके लिए सबसे खूबसूरत पल था संत पेतरस महागिरजाघर के प्रांगण में बुजुर्ग लोगों से मुलाकात करना। उन्होंने कहा कि वे एक चीज देखना पसंद नहीं करते हैं, वह है जवानों का युद्ध में मारा जाना। इस 10 साल के समय जिसको तनाव में व्यतीत किए गए, उन्होंने कहा, यह समय स्थान से बड़ा है और इसने मुलाकातों, प्रेरितिक यात्राओं और चेहरों को देखा है। वे क्या महसूस कर रहे हैं जब वे अपने जीवन और प्रेरिताए के इस मील के पत्थर के अवसर को दुनिया के साथ मना रहे हैं। संत पापा ने कहा, समय उड़ता है या जल्दी में है। जब आप आज को पकड़ना चाहते हैं, तभी कल हो जाता है। इस प्रकार से जीना कुछ नया है। ये 10 साल ऐसे ही गुजरे हैं तनाव में रहते हुए। वे अपने सबसे खूबसूरत पल के बारे बतलाते हुए कहते हैं कि यह 28 सितंबर 2014 का दिन था, जब संत पेतरस महागिरजाघर के प्रांगण में उन्होंने विश्व भर के बुजुर्ग एवं दादा दादियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, बुजुर्गों के पास प्रज्ञा है और वे मुझे बहुत मदद करते हैं। मैं भी बुजुर्ग हूँ, है ना। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात को भी प्रकट किया कि कई बुरे क्षण भी रहे हैं और वे क्षण युद्ध के आतंक से जुड़े हैं। पहला रेडिपोलिया और अंतिसियों में युद्ध कब्रस्थान का दौरा, नॉर्मांडी में मित्र राष्ट्रों के उतरने की स्मृति, सीरिया में युद्ध को रोकने के लिए जागरण प्रार्थना और इस समय यूक्रेन में एक साल से अधिक समय से जारी बर्बरता। संत पापा ने कहा कि युद्ध के पीछे हथियारों का उद्योग है, यह शैतानी है। उन्होंने कहा कि वे एक धर्मदक्ष के रूप में दुनिया के आखिरी छोर से आए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे पोप चुने जाएंगे और सभा में कलीसिया का संचालन तृतीय विश्व युद्ध के दौरान करेंगे। उन्हें लग रहा था कि सीरिया ही एकमात्र देश होगा, लेकिन दूसरे देश भी शामिल हुए। संत पापा ने कहा, मुझे जवानों को मरते देखना बहुत दुख देता है, चाहे वे रूसी हों या यूक्रेनी, जो लौट कर नहीं आते, यह कठिन है। संत पापा फ्रांसिस को अपने इस महत्वपूर्ण वर्षगांठ के अवसर पर उपहार की मांग करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। वे कहते हैं, शांति, हमें शांति चाहिए। अतः कलीसिया के लिए, दुनिया के लिए और जो मानवता के लिए दुनिया का संचालन करते हैं, उनके लिए संत पापा के तीन सपनों के तीन शब्द हैं, भ्रातृत्व, रोना और हंसना। संत पापा फ्रांसिस के परमाध्यक्ष काल के 10 साल पूरा होने पर वैटिकन न्यूज के संपादक के निदेशक अंद्रिया तोर्नेल्ली ने उनके मूल संदेश करुणा पर चिंतन किया है। 13 मार्च 2013 को जोर्ज मारियो बेरगोलियो के पोप चुने जाने के 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखना महत्वपूर्ण है। यह याद रखने योग्य है कि संत पापा फ्रांसिस किन प्रस्तावों को रखते और कलीसिया के किस चेहरे का साक्ष्य देते हैं। जैसा कि हम एवंजेली गौद्यम में पाते हैं, कलीसिया पहला कदम लेना जानती है, दृढ़तापूर्ण पहल करती, चौराहों पर खड़े होकर निर्वासितों का स्वागत करती और करुणा प्रकट करने की असीम चाह रखती है, जिसको उसने पिता के असीम करुणा की शक्ति में महसूस किया है। संत पापा फ्रांसिस क्रिस्त समुदाय के इसी चेहरे को प्रकट करते हैं, जो स्वसंदर्भ के अभिशाप से मुक्त है, जो जानते हैं कि वे वास्तव में मिशनरी तभी हो सकते हैं जब वे स्वयं को प्रकाश का स्रोत समझे बिना प्रभु के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। करुणा वास्तव में वह शब्द है जो अर्जेंटीना के पोप के धर्म सिद्धांत का सबसे अच्छा सार प्रस्तुत करता है। जब वे अपने परमाध्यक्ष काल के दूसरे दशक में प्रवेश कर रहे हैं, यह हर गिरावट के बाद लगातार प्यार किए जाने और उठाए जाने की चेतना है। यह हमारे बदलते युग में प्रेरिताय की कुंजी है। विश्व पत्र एवंजेली गौतम में हम पुनः पढ़ते हैं कि सुसमाचार प्रचार करने वाला समुदाय लोगों के दैनिक जीवन में कथनी और करनी से शामिल होता है। यह दूरियों को पाटता है, यदि आवश्यक हो तो यह खुद को नीचा दिखाने के लिए भी तैयार रहता है और वह मानव जीवन को गले लगाता है और दूसरों के पीड़ित शरीर में मसीह को छूता है। यह समुदाय स्वागत करने, सुनने, साथ देने यानी सहभागी होने के लिए तैयार है, जैसा कि यीशु ने अपने शिष्यों के साथ किया जब वे उनके पैर धोने के लिए झुके। यह एक धैर्यवान समुदाय है। पोप फ्रांसिस ने अपनी सेवा के पहले 10 वर्षों में इसी संदेश को प्रकट किया है। उन्होंने उन शब्दों को खुद जिया है जिसको उन्होंने कॉन्क्लेव से पहले महासभा के लिए अपने संक्षिप्त भाषण में कहा था। उन्होंने कहा था, अगले पोप के बारे सोचते हुए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो यीशु ख्रिस्त पर चिंतन और आराधना द्वारा कलीसिया को अपने आप से बाहर निकलने और सुदूर क्षेत्रों में जाने में मदद कर सके, ताकि वह सुसमाचार प्रचार के मीठे और सुकून देने वाले आनंद की एक फलदायी माँ बन सके। उधर भारत की कार्तिक कलीसिया ने संत पापा फ्रांसिस के पोप चुने जाने के 10 साल पूरा होने पर उनके लिए ईश्वर को अपना आभार प्रकट किया है तथा उनके लिए विशेष प्रार्थनाएं अर्पित की हैं। भारतीय कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने एक वीडियो में कहा है कि भारत की कलीसिया प्यारे संत पापा के उपहार के लिए प्रभु के प्रति आभारी है। हजारीबाग के धर्माध्यक्ष आनंद जोजो ने एक मैसेज में कहा है, हमारे प्यारे संत पापा फ्रांसिस को हार्दिक बधाई और माता कलीसिया एवं मानवता के लिए उनके अनेक चुनौतीपूर्ण प्रयासों के लिए धन्यवाद। ईश्वर उन्हें प्रचुर आशीष प्रदान करे और उन्हें अपनी शांति, आनंद और सुरक्षा से भर दे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।